रात रंग तो शाम रंग पाहण्या नजर भिर भिरते ऐकू न तान विसरू न भान ही वाट कुणाची बघते रंगात रंग तो शाम रंग पाहण्या नजर भिर भिरते ऐकू न तान विसरू न भान ही वाट कुणाची बघते त्या सप्त सुरांच्या लाटे वरुणी साद ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी हिरव्या हिरव्या झाडांची पिवळी पाने झुलताना चिंब चिंब देहावरुनी श्रावण धारा झरताना हा दरवळणारा गंध मातीचा मनात बिलगुन जाई हा उन्हाड वारा गुज प्रीतीचे कानी सांगून जाई त्या सप्तसुराच्या लाटे वरुणी साद ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी
ओम शांति। लिख लिख भेजी अनगिन पाती फिर भी नहीं निठुर तुम आए दिन गए दिन फिर गए बिजन बगिया के घिर घिर आए घन कजरारे महक उठी मेहंदी की क्यारी चहक उठे द्वारे चौबारे आंगन की निबिया बौराई फूल उठी घर की अमराई सब सब बोले तुम ही न बोले बैठे हम एक हम ही मन मारे हंसी खो गई खुशी खो गई नींद बिकाई चैन गवाए किसके मंदिर करूँ आरती किसके द्वारे करूँ समर्पण किसको भेजू मौन संदेशे किसको भेजू नेह निमंत्रण लिख लिख भेती भेजी अनगिन पाती कोई नहीं लौट कर आती सब सब आए तुम ना आए ऐसी बान पड़ी किस कारण इतनी इतनी लगन धराई इतने जितने जतन कराए गुमसुम चुप रह गई देहरी खटक खटक रह गई किवरिया झूम झूम झुक उठे बदरवा बरस बरस रह गई बदरिया जब जब आई याद तुम्हारी बड़ी और मन की लाचारी कसक कसक रह गए करेजवा बिज गई बेरहम उमरिया सौ सौ बार संदेश पठाए फिर भी नहीं निठुर घर आए लिख लिख भेजी अनगिन पाती फिर भी नहीं निठुर तुम आए। प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है कि कितने पत्र तुमको भेजे कितनी बार तुमको बुलाया फिर भी तुम कैसे हो निठुर निष्ठुर हो बड़े ही निर्दयी हो कि तुम जवाब नहीं देते इतने पत्र तुमको भेजे दिन फिर गए बिजन गुमसाम गुमसुम हो गई थी ये बगिया और अब क्या हुआ बादल कजरारे काले काले बादल आ गए महक उठी मेहंदी की क्यारी चहक उठे चारे सारो सारे चौबारे आंगन में जो नीम का पौधा है वो भी झूम उठ रहा है आई झूम उठ रही है सब बोले पर केवल तुम न बोले क्यों बताओ हंसी खो गई, खुशी खो गई, नींद बिकाई, चैन गवाई। अब क्या करूं, किसके मंदिर जाकर आरती करूं, किसके द्वारे करूं समर्पण, किसको भेजू मौन संदेशे, किसको भेजू नेह निमंत्रण। पर तुम सुनते ही नहीं, कब से पुकार रहे है? तुम आते ही नहीं। लिख लिख भेजी अनगिन पाती, कोई नहीं लौट कर आती, सब सब आए तुम ही ना आए। इतनी इतनी लगन धराई, इतने इतने जतन कराए, गुमसुम चुप रह गई देहरी, दहलीज भी चुप है, खटक खटक रह गई कबरिया, किवाड़ भी खिटक खिटक कर शांत हो गए, झूम झूम उठे बदरवा, बादल भी झूम रहे हैं, बरस बरस रह गई बदरिया, जब जब आई याद तुम्हारी, क्या हो गई बढ़ गई मन की लाचारी, कसक कसक रह गए करेजवा। ये दिल तीस उठ रही है, बिज गई बेरहम उमरिया, ये उम्र भी इतनी जा रही है, तुम आओगे कब? कब से पुकारता हूं, कब से पुकार रही हूं, सौ बार संदेश पठाए, कितने संदेश भेजू, बाट जो होते जो होते उमरिया बीत जा रही है, फिर भी नहीं निठुर तुम आए। लिख लिख भेजी अनगिन पाती, फिर भी नहीं निठुर तुम आए। अपलक लोचन सतत प्रतीक्षा। तो एक प्रेमिका, प्रेमिका इंतजार कर रही है, आत्मा वो प्रेमिका है जो अपने परम प्रेमी का इंतजार कर रही है, कब से? द्वापर से। और फिर वो आता है और फिर क्या करता है, आकर ऐसी वीणा, ऐसी बांसुरी, ऐसी मुरली सुनाता है कि सभी देहभान से परे हो जाते हैं। आत्मा की जो प्यास थी जन जन की, प्रभु प्रेम की, प्रभु मिलन की, परमात्मा ज्ञान की, वो आकर वो मिटाता है, बुझाता है, और आत्मा उसमें डूब जाती है। तो यदि हमारे जीवन की कोई जीवनी लिखे, बायोग्राफी, तो वो क्या लिखेगा कि इनके जीवन में कुछ ऐसे दिन थे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और सबसे अधिक खुशी के थे, और वो दिन कौन से थे? प्रभु मिलन के दिन। और ऐसा ही वो दिन आज आया है, ऐतिहासिक दिवस जीवन का, जिसमें आत्मा परमात्मा से मिले। बहुत खत लिखे, वो अब तक नहीं आया पर अब आया है, तो उससे जो मिलन होगा वो आत्मा को भरपूर कर दे, आनंद विभोर कर दे, मगन कर दे। स्पिरिचुअल मैडनेस इसको कहते हैं, डिवाइन मैडनेस। रामकृष्ण परमहंस थे, वो बचपन से थोड़े से अलग थे सन की बाकी सबसे अलग, उनको धंधा पैसा ये सब चीजों में कोई रस नहीं था। बगुलों को उड़ते देखते तो भाव विभोर, भाव समाधि में चले जाते। 1866 कोलकाता आए और वहां एक काली का मंदिर था, रानी रासमनी का बनाया हुआ, और उनको पुजारी के रूप में वहां रखा गया। और जब वो वहां थे उनकी हरकतें थोड़ी विक्षिप्त थी, वो उस काली से बातें करते थे, नाचते थे, झूमते थे, एकांत में कुछ कुछ करते रहते थे, ऑफिशियल ड्यूटीज थी उसके अतिरिक्त, पुजारी की भी ऑफिशियल ड्यूटी होती है, और उसके अतिरिक्त झूमते रहते थे, आते रहते थे, लोगों को बहुत चिंता हुई, मां को चिंता हुई, सोचते थे शायद ये कुंवारा है अकेला इसलिए ऐसा होता है, इसकी शादी करवा दो। पर उसका वो पागलपन डिवाइन एक्सटेसी था, स्पिरिचुअल मैडनेस था। ये तो लोगों को तब पता चला जब वहां वो ब्राह्मणी आई एक भैरवी, उसने इसको देखा, सन्यासिनी थी, और उसने देखा ये क्या कर रहा है, लोग तो इसको पागल समझते हैं पर क्या ये वास्तव में पागल है। उसने उसकी साइंटिफिक एग्जामिनेशन परीक्षण किया, बहुत सारे विद्वानों को बुलाया, और सबके सामने कहा कि इसको ये जो हो रहा है ना, ये पागलपन नहीं है, ये जो हो रहा है ये ईश्वरीय उन्माद है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल मैडनेस, ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। तब कहीं जाके लोगों को उनके प्रति सम्मान उत्पन्न हुआ, तब कहीं लोग उनको समझने लगे ये वास्तव में धार्मिक पुरुष है। अब तक तो उनको पागल की श्रेणी में रखा था कि जिसको काम नहीं करना है, ड्यूटीज नहीं करनी है। साधना दो तरीके से होती है, एक है शास्त्रीय साधना जो स्वीकृत है, एक है अशास्त्रीय साधना जो ये ऐसे लोग करते हैं जिनको क्रिश्चियनिटी में होली फूल्स कहा जाता है, ब्लेसेड फूल्स, फूलिशनेस फॉर क्राइस्ट ऐसे नाम दिया गया है, जो कि पागल है। उनकी हरकतें अगर दूसरे मेडिकल के लोग देखे, डॉक्टर देखे तो कहेंगे इनको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है एडमिट करके, परंतु उनका वो पागलपन स्पिरिचुअल मैडनेस है, डिवाइन मैडनेस है, और ये बहुत आगे की अवस्था है। हिंदू धर्म में अवधूत कैटेगरी है, वो इस कैटेगरी में आते, इस श्रेणी में आते। परमहंस है, चार प्रकार के सन्यासियों में परमहंस जो होता है, हंस, परमहंस, कुटीचक, बुद्रुक, चार सन्यासियों के ग्रुप में सबसे हाईएस्ट आता है परमहंस, सबसे हाईएस्ट आता है अवधूत। क्रिश्चियनिटी में होली फूल्स, सूफिज्म, बौद्धिज्म, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए, अवधूत, अवतार की श्रेणी लगभग उससे भी ऊपर की है। तो ये सारी जो अवस्थाएं है ये ईश्वरीय उन्माद की अवस्था है। तो आत्मा जन्म जन्म से प्यासी थी, जन्म जन्म से पुकार रही थी, फिर भी निठुर तुम नहीं आए, अब वो आया है। पर तो उसके साथ हमारा जो मिलन है वो भी कैसा हो, आनंददायक। आत्मा में जो भी कमियां, जो भी किचड़ा है, जो भी गंध है, कल मुरली में था ना, गंध है, किचड़ा भरा है, वो सारा किचड़ा इस मिलन से निकल जाए, ऐसा भाव विभोर करने वाला हमारा भगवान से मिलन हो। पर मिलन इतना सस्ता भी नहीं है, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है, इसके लिए मेंटल प्रिपेरेडनेस, मन को सभी व्यर्थ से बचा के रखना सारे दिन भर, तो ही कहीं जा, दिन भर की तो बात ही नहीं है, जीवन भर की बात है, पर आज फिर भी विशेष दिन है, तो कम से कम अब तक नहीं बचाया तो आज के दिन कोई भी व्यर्थ उसमें प्रवेश ना करे, किधर की यहां वहां की ऐसी वैसी बातें उसमें प्रवेश ना करे। मन को तैयार करना है कि हमारा आज क्या होने वाला है, भगवान से मिलन होने वाला है, और उसके एक एक शब्द चेतना में ऐसे समा जाए, ऐसे डूब जाए कि आत्मा भरपूर हो जाए, और कोई एक कमजोरी, कोई एक संस्कार, कोई एक खामी, कोई एक कमी जो लंबे समय से चल रही है वो समाप्त हो जाए, भस्म हो जाए। इस संकल्प के साथ आज सुबह से शाम तक अपने मन को तैयार करना है ताकि हमें वो आनंद प्राप्त हो सके। गीत में था रंगा तरंग तो श्याम रंग पहनास नजर भिर भिर दे, ये राधा की अवस्था का वर्णन है कि जिसकी नजर केवल उसको देखने के लिए तरस रही है और किसी को देखना ही नहीं चाहती है, किसी को देखने की इच्छा ही नहीं है। कल की मुरली में था क्या, किसको देखने की इच्छा नहीं होगी, कब, जब तुम पवित्र बन जाते हो, तुम्हारी प्यूरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, किसी की शक्ल देखने की भी इच्छा नहीं होगी तुमको, किसी भी देहधारी की देखने की इच्छा नहीं, ना अपने शरीर को देखने की इच्छा होगी, ना दूसरों के शरीर को देखने की इच्छा होगी, ना अपने शरीर को किसी को दिखाने की इच्छा होगी, ना दूसरों के शरीर को देखने की इच्छा होगी, ना ही ना देखने की इच्छा है। इसी को स्पिरिचुअल मैडनेस कहा जाता है। ये जैसी जैसी आत्मा ऊपर ऊपर जाती रहती है, जाती है, देह नीचे छूटता जाता है, देह की दुनिया नीचे छूटती जाती है, देह से संबंधित जो कोई बातें हैं सब नीचे, जब हमारा अपनी ही देह से लगाव नहीं तो दूसरों का मेरी देह से लगाव कैसे हो सकता है। अगर किसी का मुझे मेरी देह से लगाव हो रहा है अर्थात मेरा अपना अपनी देह से लगाव है, मैं अपनी ही देह से बाबा की भाषा में गायब हो जाओ, गुम हो जाओ, सुन हो जाओ, सन्नाटा छा जाए जैसे कोई मर गया है, गायब हो जाओ, सुन हो जाओ, खो जाओ, तो एक ही रंग देखना है उसको। कौन सा रंग? श्याम रंग। ये राधा की अवस्था है। ऐकुण तान विसरू न भान ही वाट कुणाची भगते। अपने शरीर का भी भान भूल गई है और क्या कर रही है? इंतजार, निठुर तुम कब आओगे। त्या सप्त सुरांचा लाटे वरुणी साध ऐकुनी होई। वो जो सात सुर है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, इस ब्राह्मण जीवन के सात सुर, वो सात सुर की तरंगों को सुनकर, उस आवाज को सुनकर राधा को क्या हो रहा है? राधा ही बावरी हरी जी पागल हो रही है। बावरा पता है ना? बावला। बावरा अर्थात बावला, अर्थात पागल, अर्थात जिसके दिमाग पर किसी का साया है, दीवाना है, आशिकी है, दिल लगी, स्पिरिचुअल मैडनेस, रूहानी आशिकी। राधा ही बावरी रंगात रंग तो श्यामना रंग पहान्यास नजर भिर भिरते ऐकू न तान विसरू न भान ही वाट कुणाची भक्ते। त्या सप्त सुरांचा लाटे वरुणी साध ऐकुणी होई। राधा ही बावरी हरीची हिरव्या हिरव्या झाडांची पिवळी पाने झुलताना चिंब चिंब देहावरुणी श्रावण धारा झुळताना। हा दरवळणारा रंग गंध मातीचा मनात बिलगुन जाई। हा उन्हाळ वारा गूज प्रीतीचे गाणी कानी सांगून जाई। वो वर्णन कर रही है यहां का जो कुछ उसको दिख रहा है वो सारा देखकर उसका ध्यान ऊपर जा रहा है। जैसे बताया रामकृष्ण का, जैसे वो खड़े रहते थे और किसी ने गीत गा लिया तो गए भाव समाधि में। कब भाव समाधि में चले जाए कोई उसकी गारंटी नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। थोड़ा सा सुन लिया कुछ बस गए, ऐसी अवस्था है। इतिहास में बहुत कम लोगों की बताई है, एक तो चैतन्य महाप्रभु, दूसरा ये ठाकुर रामकृष्ण। तो यह सप्त सुरांचा लाटे वरुणी, सप्त सुर है। तो आज शाम को भगवान से मिलन होगा, मुरली चलेगी। उस मुरली को केवल सुनना नहीं है पर जो भी मुरली चलेगी उसको सुनने की अपनी तैयारी करनी। तो जैसे कहा सात सुर है, सा रे ग म प ध और नी, ऐसे ये सप्त सुर है। सप्त सुरांचा लाटे वरुणी साध ऐकुनी हुई। ये सुनकर ही राधा क्या हो रही है? बावरी। सबसे पहला है सा, सार, जो मुरली हम सुनेंगे शाम को ऐसे सुनना है कि उसका सार मन में छप रहा है और अगले 10 दिन तक इसी मुरली को रोज रिवाइज करते रहना। जो आज शाम को चलेगी अगले 10 दिन तक इतनी बार उसको पढ़ना है, इतनी बार उसको पढ़ना है ताकि उसका जो सार है वो मन में समा जाए। वो क्या सुनाएगा पता नहीं, परंतु बैठना ही ऐसा है कि जो वो सुनाएगा उसमें मेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। बैठना ही ऐसा वहां पर कि ये जो सुनाया जाएगा इससे आज एक नया जन्म होने वाला है, मेरा नया जन्म होने वाला है। एक ऐसी पॉइंट मुझे मिलने वाली है, न्यू अंडरस्टैंडिंग, नई समझ, कि जिससे जीवन पलट जाएगा पूरा। तो हर दिन ये काम करना है परंतु आज विशेष हर दिन भी ये सात काम करने हैं जो आज बता रहे हैं। सार अर्थात सार, जो कल की मुरली थी उसका सार क्या था, वो सार नहीं जो लिखा है धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट एक और पॉइंट टू, वो नहीं, वो किसी और का निकाला हुआ है। हमने क्या निकाला? बाबा ने कहा कुल्हाड़ी। कौन सी? देह अभिमान की कुल्हाड़ी। अपने ही पैरों पर मारते हैं और फिर खून बहता और फिर रोते हैं कि दुख से छुड़ाओ, दर्द बहुत है, मारी किसने? किचड़ा है, गंध है आत्मा में, इसको वहां से निकालना है, साफ करना है, जला देना है। तो मुरली सुनते समय, सुनते ही इस भाव से बैठना है कि इसका सार मुझे पकड़ना है, एक एक लाइन का सार क्या है, जैसे जैसे मुरली चल रही है सार क्या है, सार क्या है, और इसकी तैयारी अभी से चालू करनी है। अभी मन को चिंतन के उस मौन में ले जाना है, गार में, गुफा में, वहां से अभी चिंतन करना चालू कर देना है, ताकि शाम को मन शांत हो जाए और वो जो सुनाएगा वो सीधा अंदर घुस जाए। तो सार क्या है, हर मुरली से ये निकालना कि इस मुरली का सार क्या। अभी भी मुरली सुनी, अब छोड़ो, किताब छोड़ो, सब छोड़ो, डायरी छोड़ दो, एकांत में बैठो और क्या सुना, मुख्य क्या था, सबसे महत्वपूर्ण क्या था, इसका सार क्या है, मेरे लिए क्या है, दूसरों को सुनाने के लिए दूसरा, भाषण के लिए दूसरा, भाषण की पॉइंट्स नहीं, मेरे अपने लिए क्या था सा। दूसरा है रे, रे अर्थात रेखा, रेखा अर्थात मर्यादा। आज की मुरली में कौन सी मर्यादा का जिक्र चर्चा बाबा ने की है, कौन सी मर्यादा, कौन सी श्रीमत, कौन सा रूल, कौन सा रेगुलेशन, कौन सी वो पॉइंट है जो करनी है ऐसा लिखा हुआ है या करनी नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, डूज और डोंट्स क्या है। कल क्या कहा था बाबा ने, खाना कब छोड़ दो, अगर कोई आ जाए बीच में, पहले समझाओ फिर खाना खाओ। कड़ी श्रीमत है ये तो, हम कहेंगे बैठो मैं आता हूं। बाबा कहते हैं बैठो, वो नहीं, तुम पहले निकलो वहां से, सुनाओ और फिर आओ। तो आज की मुरली की क्या क्या लक्ष्मण रेखा है, आज की मुरली में जो शाम को चलने वाली है उसमें कौन सी मर्यादा की चर्चा होने वाली है, या बाबा ने कौन सी मर्यादा के बारे में कहा, क्या वो पवित्रता के बारे में कहा, अपवित्रता के बारे में कुछ कहा, कौन सी धारणा के लिए कहा, क्रोध जलाता है, क्रोध के लिए कहा, किस लिए कहा, क्रोध क्या कर देता है, कैसे बन जाते हैं तांबे के जैसा, केवल सुनना नहीं, वो जो पॉइंट आई है मर्यादा, सारे दिन भर उसकी चर्चा करना, चिंतन करना, मन ही मन इंटरनल डायलॉग मुरली कहो कि ये कहा गया, क्यों कहा गया, क्रोध से मैं कब कब बना ऐसा, कैसा, तांबे जैसा, और फिर क्या हुआ, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने अनुभव है जीवन के, उन अनुभवों को मुरली के पॉइंट्स के साथ जोड़ना है, ये जो कह रहा है ये सही में है या बस ऐसे ही। रे अर्थात रेखा। तीसरा है ग, गफलत, गलती, गड़बड़। मेरे जीवन में कौन सी गलतियां हुई है, कौन सी गड़बड़ हुई है, कौन सी गफलत हुई है, कौन सी भूले हुई है, और जिनका उत्तर मुझे आज की मुरली में मिल रहा है। जरूर ये जो मैंने गलती की है इस मुरली में, कोई तो ऐसी बात है कि जो मैंने नहीं की इसलिए तो ये गलती हो गई, और जिसका पश्चाताप कि आग में अब भी मैं जल रहा हूं, कौन सी गलती है वो और क्यों वो गलती हुई, किस कारण से हुई, किन परिस्थितियों में ही, किस स्थान पर हुई, किस समय हुई, स्थान, टाइम, प्लेस, पर्सन। हर गलती का टाइम होता है, प्लेस होता है, पर्सन के, किसी व्यक्ति के संबंधित होती है या खुद के संबंधित। कुछ कुछ गलतियां विशिष्ट समय पर ही होती है, बाकी समय नहीं होती है। ऐसे क्लास में बैठेंगे, मुरली सुन रहे बैठे, तो कोई बुरे विचार थोड़ी आते हैं। इस टाइम पे बैठेंगे तो आएंगे, कभी नहीं, उस स्थान पे भी नहीं आएंगे। पर वही व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, एयरपोर्ट पर बैठा है, बाजार में घूम रहा है, तो कुछ कुछ आते रहेगा। स्थान टाइम पर्सन चेक करना है, या फिर आज शाम को जब बाबा के सामने बैठेंगे तो सारा ही ब्राह्मण जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल के बैठना, ये है ब्राह्मण मेरा जीवन, और एक दूसरा काम दे रहे हर एक को जिसके लिए आज सबको लिखना है सारे दिन भर, मेरा ब्राह्मण जीवन कैसा हो, इसका एक शब्द चित्र लिखना है, मेरा ब्राह्मण जीवन कैसा हो, अर्थात अमृत वेला कैसा हो, मुरली कैसा हो, बात करना कैसे हो, बोलना कैसा हो, दिन भर मैं क्या करता हूं, बच्चों के साथ व्यवहार, घर पे व्यवहार, पति के साथ, पत्नी के साथ, ऑफिस में बॉस के साथ, ब्राह्मण जीवन कैसा हो, इसका क्या करना है, शब्द चित्र, एक पिक्चर बनाना है। चाहे लिखो या लिखना नहीं है तो एकांत में बैठ के सोचो कि मेरा अमृत वेला कैसा होना चाहिए, मेरा मुरली सुनना पढ़ना चिंतन कैसा होना चाहिए, कर्मयोग कैसा होना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल कैसा होना चाहिए, नुमा शाम का योग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रात को मैं जिस ढंग से सोता हूं वो ठीक ठाक है या इसको कुछ थोड़ा सा ठीक करना है। क्या ऐसा होता है कि एकदम आराम से बाबा की याद में सोता हूं या कुछ कुछ और करते हुए सोता हूं, सोता कैसा हूं, यह व्यक्ति का चरित्र है, हर व्यक्ति किस तरह सोता है। फोन पे बातें करते करते कब नींद आ गई और कब मोबाइल बंद हो गया पता ही नहीं चला या चालू ही रह गया, सो कैसा रहा है व्यक्ति, क्योंकि सारे ब्राह्मण जीवन का आधार अमृत वेला है और अमृत वेले का आधार है रात को सोने की विधि, किस ढंग से सोया जा रहा है, हल्का होके सो रहे, थक के सो रहे, बस ऐसी थकान हो गई और लेट गए और गुम हो गए, सुन पता ही नहीं कहां चले गए, जागते हुए सोना है, आत्मा की आंखें खुली रहे सोते समय, जागृत अवस्था में नींद में जाना है ताकि जागृत अवस्था में नींद से निकलेंगे, अर्थात सोना है पर नहीं सोना है, अर्थात सोते हुए भी जागते ही रहना है, सोने का ढोंग करना है, रात को हम सो रहे हैं परंतु है योग में, सोना है पर छुप छुप के योग करना है, लोगों को धोखा देना कि हम सो रहे हैं पर उनको पता ही ना चले हम योग कर रहे हैं, कल था गुप्त मेहनत, अर्थात गलती कौन सी, गड़बड़ चल रही है अभी वर्तमान में, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है ब्राह्मण जीवन में, आध्यात्मिक गड़बड़ स्पिरिचुअल गड़बड़ तो नहीं चल रही है, किस तरह की चल रही है, संघर्ष तो नहीं चल रहा है किसी संबंध में, किसी व्यक्ति के साथ, किसी बात का, कोई पश्चाताप, कोई भूल, भूल हो गई उसका पश्चाताप या फिर भूल की तैयारी में है, आज करनी है, पता है नहीं करनी है पर विवशता है, पता है टाइम वेस्ट करना ही नहीं है पर चार दिन की संस्कार, चार दिन से वेस्ट कर रहे हैं तो आज भी वेस्ट ही होगा। लोग मधुबन आते हैं अपनी दिनचर्या लेकर आते हैं, तीन दिन तो इधर की सेट होने को लगते हैं, तीन दिन उधर की दिनचर्या चलाते, फिर तीसरे चौथे दिन यहां की दिनचर्या में आते, यह अभी इधर है, तब तक वापस जाने का टाइम आ जाता है लास्ट दिन, उसके बाद में मनन, मां से क्या करना है, मुरली का मनन, अभी से मनन करना चालू कर दो, कौन सी मुरली का, जो शाम को चलाई जाएगी, जो अभी तक सुनी नहीं है, अनसुने का मनन करना, कितनी अच्छी बात है, जो सुना है उसका मनन करना, जो पढ़ा है उसका मनन करना, तो सब कर रहे हैं पर जो सुना ही नहीं है, जो अभी भी क्या कहेंगे उसको, इनऑडिबल को इंग्लिश हिंदी में असुना है, अनसुना है, अनहर्ड, अनहर्ड का मनन करो, जो सुना ही नहीं है अभी, जो चलाने वाला है वो, क्या हमारा योग इतना नहीं है कि हम अभी से जान ले कि वो क्या चुनाने वाला है,
फिर भी हम अगर उससे इससे जुड़ जाए दिन भर में कि हमको यही पता चल जाएगा वो बताने क्या वाला है, वो तो मुरलिया हाथ में आ जाएगी, शब्द तो मिल जाएंगे, हार्ड पेपर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, परंतु टचिंग्स क्या वो बताने वाला है वो पहले ही सुनना और पहले ही उसका मनन करना। सुनकर मनन ये भी ठीक है, पर अनसुनकर मनन वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो मनन सा रे ग म, फिर है प, प से तीन बातें हैं। पहला है मुरली पढ़ना, तो आज जो शाम को मुरली चलेगी वो या तो रात को या तो कल सुबह पढ़ना जरूर है। हमने देखा कई लोग जो बाबा मिलन में आते हैं मुरली जैसे हो जाती है उसके फिर बाद घूमना फिरना चालू हो जाता है, हाथ में मुरली उनके पास रहती नहीं है, कहते हार्ड कॉपी चाहिए वो मिलती नहीं है, और फिर घूमने फिरने में यही दो तीन दिन गुजर जाते हैं, फिर सेंटर पहुंचते तब तो दूसरी मुरली आ चुकी है, तीन चार ये छूट गई। बहुत कम होते हैं जो बाबा मिलन में आए हुए हैं और जो मुरली चली उसके तुरंत बाद या दूसरे दिन मुरली पढ़ने वाले, बहुत कम, क्योंकि इतने काम है उनको, यहां पर शॉपिंग करनी है, पार्टियों को घुमाना है, इससे उससे मिलना है, कितने काम है, कौन पढ़ेगा मुरली। जिस काम के लिए आए थे यहां मुरली सुनने के लिए, मधुबन में आने का लक्ष्य क्या था, बाबा से मिलन और मुरली सुनना, जो मुरली है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, अब दूसरे दिन खत्म हो गया इंटरेस्ट, बस उसी दिन के लिए था वो, शाम के लिए उतना ही, उसका चिंतन उसका मनन उसमें टॉपिक्स उसमें क्या नई बातें थी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब तक दूसरे दिन सुबह की साकार मुरली तो आ ही गई है, ये तो गई हाथ से, काम पूरा हुआ, कारोबार। पढ़ना बहुत जरूरी है, तो जो मुरली आज चलेगी तुरंत आपको डेट तो पता चल जाएगी बाद में, क्योंकि अभी तो हम 5G में हैं, पहले था 1G 1936 से लेके तो 1950 तक, फिर आया 2G ब्रह्मा बाबा की पालना जिन्होंने 50 से लेके तो 69 तक, फिर आया 3G 69 से लेके तो 2007 तक, दादी प्रकाशमणि जब तक थी, फिर आया 4G तब से लेके तो 2017 तक जब तक बाबा आते थे, और अभी 5G चल रहा है जबकि पुराना प्ले होता है, अभी 6G आने वाला है, वो क्या होगा पता नहीं, अभी पुरानी मुरलियां तो चल रही है, वही ऑडियो प्ले हो रहा है और वीडियो, अभी आगे क्या होगा पता नहीं, शायद वो भी बंद हो जाए धीरे धीरे। तो जो लोग यहां पर आए हैं जिन्होंने अव्यक्त बाबा का अवतरण ही नहीं देखा कैसा होता है, अभी देख रहे हैं वीडियो में, वो भी पुराना, वो भी थोड़ा सा, तो काम तो बहुत करना पड़ेगा उनको। 5G में एंट्री किया है यज्ञ में, तो पहला है पढ़ना, जो मुरली चलेगी लक्ष्य रखना है आज रात को ही पढ़ना, क्योंकि मुरली तो 8:30 बजे तक पूरी हो जाती है, तो टाइम तो बहुत है, 10 बजे तक का टाइम है, भोजन कई लोग बीच में से भोजन भी करके आ जाते हैं, और कुछ कुछ महारथी तो बाबा उधर सुना रहे और इधर सैंडविच की खुशबू और फ्रूट्स की खुशबू, सारा तैयारी के साथ आते हैं, उधर भगवान को भोग नहीं लगा है, इधर भोग चालू है, हमारा अपना भोग पिकनिक के लिए, अपना बीच में से ही सुगंध आ जाती है, कहां से ऐसे भी वेपर तो भगवान को भोग नहीं लगा, इधर हमारा भोग। थोड़ा सा अपनी भूख को इतनी कच्ची नहीं रखो, अपनी भूख को इतना भी कच्चा नहीं बना के रखो कि बस ही नहीं है उसके ऊपर। पढ़ना, तो मुरली चलेगी उसके बाद में तुरंत उसको पढ़ना या कल सुबह पढ़ना। दूसरा पढ़ना है जो लिखा हुआ ही नहीं है उसको पढ़ना, मुरली वो चला रहा है तो वो शब्द दिखे स्क्रीन पर और हम उसको पढ़ रहे हैं। व्यक्ति बोल रहा है पर सुनना ऐसे कि सुन नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। जो शब्द निकल रहे हैं उसके मुखारविंद से वो जैसे स्क्रीन पर छप रहे हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं। ये एक दूसरा अभ्यास है, मेंटल प्रैक्टिस, कि हम मौखिक को लिखित के रूप में ले रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। वो बोल रहा है और उसके शब्द टाइप हो रहे हैं हाथों हाथ, वहीं के वहीं, वैसे के वैसे उसको पढ़ना है, अनएडिटेड, जरा भी चेंज मत करना उसमें। जैसे कोई भाषण है, वो भाषण ऐसा भाषण है कि जिसमें जरा भी कोई गलती नहीं है। इधर व्यक्ति बोल रहा है, उधर टाइप हो रहा है और जरा भी एडिटिंग नहीं, वैसे के वैसे, जस का तस। तो भगवान के बोल भी तो ऐसे ही है। भगवान का लिखित लिटरेचर कुछ है क्या? शिव बाबा ने आके कुछ लिखा अपने हाथ से कि रुको अभी ये मैं लिख के लाया हूं परम धाम से, पढ़ के सुनाता हूं, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि 8 पेजेस का है, इतना सारा सुनाना है, इधर का उधर ना हो जाए। दिस इज ओरल लिटरेचर। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ओरल लिटरेचर है, वर्बल लिटरेचर है, रिटन लिटरेचर यहां कुछ भी नहीं है, वो तो व्यक्तियों ने लिखा, वो दूसरी बात है। तो क्या करना है? पहला काम पढ़ना, दूसरा पश्चाताप। दूसरा प क्या है? पश्चाताप भी करना है कि इतनी ऊंची ऊंची बातें पर मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरे से क्यों नहीं हो पाई, क्यों टाइम वेस्ट कर दिया, कल कितना टाइम था, 15 मिनट तो बातें करने में लगा दिए फालतू में, देखने में लगा रहे क्या चालू है, आज क्या बना रहे हो, अच्छा ये, पश्चाताप। और तीसरा परिवर्तन, प में 3, मुरली सुनते सुनते ही वहीं के वहीं संकल्प कर लेना है। जैसे दिखाया चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, सभा लगी हुई है, एक वट वृक्ष है, वहां से एक बारात आ रही है, दूल्हा निकलता है, थका है, सोचता है थोड़ा वट वृक्ष के पास बैठ जाऊं, वो दूल्हा वहां बैठता है, चैतन्य महाप्रभु उसको देखते, इतना सुंदर व्यक्ति, ऐसे बड़ी बड़ी बाहुएं, इतना हैंडसम, हे प्रभु, हे कृष्ण, ये क्या कर रहा है इसके साथ तू, इसकी शादी हो रही है, ये अगर भक्त बन जाए तो कितनी तेरी सेवा करेगा, कितनी भक्ति कर सकता है, हे कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो, इसकी रक्षा करो, अब ये वासना की चक्की में पिसने वाला है। और वो जो दूल्हा होता है ये बात सुन लेता है, और वो दूल्हा भी कोई साधारण दूल्हा नहीं होता है, रामचंद्र पंडित महाकवि योगी ज्ञानी व्यक्ति होता है एक उस समय का, और वो ये बात सुनता है, ये मेरे लिए क्या कह रहे हैं, अब ये खपने वाला है संसार में, पिसने वाला है। तो वो घर जाता है, चिंतन करने लगता है, ये जो व्यक्ति ने कहा क्या ये सही है, पूरा दिन चिंतन में गुजारता है, दूसरा दिन चिंतन में, तीसरे दिन आ जाता है, कहता है मुझे शरण दो, शादी रह गई बाजू में, और अनन्य भक्त बन जाता है चैतन्य महाप्रभु का। परिवर्तन, शब्द ने परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन तो सा रे ग म प ध, ध अर्थात धारणा, क्या धारणा करूं इस मुरली से, एक तो बताया था सार क्या है, दूसरा मुझे क्या धारण करना है, मुरली में तो सुना दिया सुनाने वाले ने, पर धारणा मैंने की कि नहीं की। बाबा ने कहा किचड़ा निकालो, कल कितना बैठ के निकाला, कितना टन निकला, क्विंटल, ट्रक भर भर के किचड़ा है, जन्म जन्म का किचड़ा है, कितना निकाला कल, स्वच्छता अभियान कितना चलाया। वो एक चित्र है, बड़ा सा कान है और झाड़ू लेके कान साफ कर रहा है, एक देखा होगा ना, कान का चित्र है, बड़ा कान और एक आदमी झाड़ू लगा रहा है कान में, कितना भरा है इसमें। धारणा करनी है, ऐसे ही नहीं होगी धारणा, बहुत सोचना पड़ेगा उसके बारे में, ये क्यों नहीं हो रही है, कहां कैसे करूं, क्या प्लानिंग करूं, किससे पूछूं। कोई तो होगा जिसके जीवन में ये धारणा एकदम प्रैक्टिकल है, जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, उसको देखता हूं तो वो सहज है उसके। जैसे हम उठ नहीं पाते रोज, कभी तीन, कभी साढ़े तीन, कभी चार, कभी साढ़े चार, कभी पांच। कल बोला था पापा ने, कोई कोई यहां पे नवाब है, अपनी नवाबी चलाते, नवाब साहब, नवाब योग। और कोई कोई हम देखते हैं उनका दिनचर्या तो कुछ ठीक नहीं है, पर उठने का टाइम एकदम फिक्स्ड है, बिल्कुल अपने टाइम पर उठते हैं। सीखो उनसे जाके वो बात, जिसमें एक भी धारणा दिखाई दे रही है जो मुझ में नहीं है, उनसे वो सीखना है। चाहे दिन भर वो झगड़ा करते हो, कुछ भी करते हो, दूसरी बात है, पर उसमें वो धारणा तो है ना जो मुझ में है ही नहीं, वो मुझे उससे सीखना है। तो धारणा करनी है, तो आज मुरली चलेगी, उसमें से धारणा के लिए कुछ पॉइंट्स अपने लिए वहीं के वहीं बैठे बैठे ही निकालने, बाद में नहीं, बाद में निकालेंगे, बाद में मुरली पढ़ेंगे, वो नहीं, अभी राइट नाउ, वहां बैठे बैठे ही तुरंत परिवर्तन हो जाए कि अब भी मैं संकल्प कर लेता हूं। बस हमारा मन ऐसा है कि मुरली चलेगी ना, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पॉइंट निकालूंगा, चर्चा करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर नहीं, फिर कभी नहीं होगा, अभी बैठे बैठे ही कर लेना है। और जितना हो सके हाथ में कुछ भी नहीं रहे, लिखना कुछ भी नहीं, मुरली सुनते समय सब रख दो बाजू में, कुछ नहीं रखना, केवल सुनना और मन में लिखते जाना, मन की डायरी में नोट करते जाना, ये पॉइंट आया, अब ये अब ये, और रिवाइज करते जाना। बीच बीच में जो टाइम मिलेगा, गैप मिलेगा, बाबा रुकेंगे, पॉजेस, अंतराल, या मुरली पूरी हो जाए उसके बाद में कारोबार, उस टाइम पर रिवाइज करना है। मुरली पूरी हो गई उसके बाद जो भोग वगैरह लगता है, मन में रिविजन चालू कर देना तभी के तभी, कि ये सुना है, ये सुना है, ये सुना है, ये सुना, फिर पूछते जाना ये कौन सी डेट की मुरली थी, पता चली जाएगा। और जैसे ही पता चल जाए उसको निकालो किताब से या तो मोबाइल से, और रात को सोने से पहले जो मुरली आज शाम को चलेगी वो हरेक की पढ़ के हो जानी चाहिए, उसके सिवा सोना ही नहीं, पढ़ के ही सोना है। चलो पूरी नहीं पढ़ो, पूरी तो 8 पेज की होगी, पर जो बाबा सुनाएंगे उतनी कम से कम, 4 पेज या 3 पेज जो भी सुनाएंगे। अभी तो बाबा हमारे कंट्रोल में है ना, हम डिसाइड करते हैं कब तक उसको सुनाना है, वी डिसाइड है ना, यहां तक सुनाना है, काट छाट ये नहीं सुनाना है, ये सुनाना है, इसको हटाओ, इसको सुनाओ, तो अभी हमारे वश में है वो। देखा उसका समर्पण कितना, अपने हाथों में हमको सौंप दिया है, अब तुम डिसाइड करो, ये मैंने सुनाया था इसमें से कितना इधर सुनाना है, नयों को तो पता ही नहीं ना। और सबसे लास्ट है नी, नी अर्थात निधिध्यासन, शास्त्र का शब्द है निधिध्यासन, अर्थात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। 3 स्टेप्स बताइए शास्त्र में, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण सुनना, मनन करना, निधिध्यासन, निधिध्यासन अर्थात अप्लाई करना। तो ये जो कुछ सुना उसको तुरंत अप्लाई करना, आज रात में ही संकल्प करना, कल सुबह से मुझे इसे अप्लाई करना चालू करना है। कल अगर अप्लाई कर दिया तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे परसों अप्लाई करने के, अगर कल अप्लाई नहीं किया तो परसों के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे, ये रूल है। जैसे आज मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आज मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया तो कल की संभावना बहुत ज्यादा है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर अगर मैं ये सोचता हूं मुझे करना तो नहीं है फिर भी कर देता हूं तो कल की भी संभावना और कम हो जाती है। तो ऐसी ये 7 स्टेजेस है। सार क्या है, और कुछ भी लिखना नहीं, हाथ में कुछ भी ना हो, बस सुनना है। अगर लिखना ही है तो एक हाथ पॉइंट लिखो, थोड़ा सा एक शब्द बस, बीच बीच में, वो भी हमने देखा है, उधर बाबा ड्रिल करा रहे, इधर लोग लिखने में व्यस्त है, ड्रिल भी लिख रहे, बाबा उधर ड्रिल करा रहे, अब एकांत साक्षी हो जाओ, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ और उड़ो परम धाम, उधर ड्रिल और इधर लिखना चालू है, लिखने के भी दीवाने हैं, वो भी अच्छी बात है। हमारी ओपीडी में एक माता आती है, उसने 1,00,000 बार तो अब तक हो गया है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, अभी दूसरी डायरी चालू है मैं महान आत्मा हूं, वो हो गया अभी दूसरा चालू किया है। हाँ बहुत अच्छी बात है, व्यर्थ से मुक्त है, व्यर्थ से मुक्त है। कितना टाइम लगता है ना लिखने में, लिखने में टाइम तो लगता है। वैसे तो कल मुरली में कहा था ना, तुमको माला जपनी है ना फेरनी है, पर अगर कोई करे तो भी बहुत अच्छा है, माला ले लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, एक मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, दो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, 108 टाइम तो वेस्ट नहीं किया ना, तो ये भी अच्छा है, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, 108 की माला। सा सार निकाल, रे रेखा क्या क्या है, मर्यादा क्या है, श्रीमत क्या है, सारे ग गड़बड़ गलती गफलत क्या क्या की, म मनन करना है, वो काम कल करना, आज जो मुरली चलेगी उसका मनन सारे दिन भर होता रहे, प पढ़ना, उसको आज रात में ही पढ़ना, और जैसे कहा 24 घंटे में चीज रिवाइज होनी चाहिए, तो एक बार आज रात में पढ़ना, फिर कल वापस पढ़ना, फिर किसी को पूछना तुमने पढ़ी क्या मुरली, कुछ था उसमें अच्छा पॉइंट तो थोड़ा सा पूछ लेना, ऐसे खुद पढ़ के पर बताना नहीं मैंने पढ़ा, दूसरों को पूछना क्या था, मेरी तो पढ़ के नहीं हुई, तो वो बताएगा तो फिर मजा आएगा। प परिवर्तन, पश्चाताप गलती की हुई, और फिर उसके बाद द धारणा मुझे क्या करनी है इस मुरली से, और फिर लास्ट नी निनिधासन। तो ये 7 स्वर है, ऐकूनतान विसरून भान ही वाट कुनाची भक्ते, त्या सप्त सुरांचा लाटे वरुणी, कान साध ऐकुनी हुई राधा ही भाव बावरी। आज इथे या तरुतड़ी सूर वेणुचे खुणावती, तुझ सामोरी जाताना उगा पाऊले घुटमळती, हे स्वप्न असे की सत्य मनावे राधा हरू खुन जाई। ये स्वप्न है या सत्य है उसको राधा को समझ में नहीं आ रहा है, हर खुन जाई बहुत खुश हो रही है, क्यों, क्योंकि सप्त सुरों से कि तरंगों से ये आवाज उसको सुनाई दे रही है, और ये आवाज उसको क्या कर रही है, पागल बना रही है, बावरा कर रही है, स्पिरिचुअल मैडनेस की तरफ ले जा रही है। तो आज हमारा भी द डे ऑफ स्पिरिचुअल मैडनेस है, इस ईश्वरीय पागलपन में खो जाना है, उसकी यादों में मगन रहना, चिंतन करते रहना है, वो क्या बना बताने वाला है, वो अभी से सुनना चालू करना, पढ़ना चालू करना, सारे दिन भर आज की जो सुबह की साकार मुरली है उसमें बिजी रखना, और जितना हो सके मौन, जितना हो सके भीड़ में एकांत, जितना हो सके अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठे रहना है। तो ऐसा पावरफुल स्नेहमयी मगन करने वाला मिलन हम सभी आज मनाएंगे। ओम शांति।
आज इथे या तरुतळी सूर वेणुचे खुणावती, तुझ सामोरी जाताना उगा पाऊले घुटमळती, हे स्वप्नाचे की सत्य म्हणावे राधा हर कुन जाई, हा चंद्र चांदणे ढगा आडुनी प्रेम तयाचे पाही, त्या सप्तसुरांच्या लाटे वरुनी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी, राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी, रंगात रंग तो शाम रंग पाहण्या नजर भिर भिरते, ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते, रंगात रंग तो शाम रंग पाहण्या नजर भिर भिरते, ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते, त्या सप्त सुरांच्या लाटे वरुणी साधय कुनी होई राधा हे बावरी हरी ची राधा हे बावरी राधा हे बावरी हरी ची राधा हे बावरी राधा हे बावरी हरी ची राधा हे बावरी राधा ही